नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्ढल मैदान में आपदा प्रभावितों को वितरित की 81 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि। आपदा राहत पैकेज को बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, तपोवन में 26 नवंबर से आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। एबीवीपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और नशे को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कुल्लू जिला के झनियार गांव में अग्निकांड की एक घटना में 16 मकान जलकर राख। और आगामी सर्दियों के मौसम के दृष्टिगत शिमला जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज मंडी के पड्ढल मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से आपदा प्रभावित 4914 लाभार्थियों को 81 करोड़ 28 लाख रुपए की राहत राशि वितरित की। इस अवसर पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 1513 लाभार्थियों को 4-4 लाख रुपए की पहली किश्त प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा राहत पैकेज को 7,70,000 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा की।
आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से उन सभी आपदा प्रभावित परिवारों को 70,000 की जगह हम 1 लाख रुपया देने की भी मैं आपको घोषणा करता हूँ। तो इस तरह ये पैकेज 7 लाख से बढ़कर 8 लाख का हो गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये पैकेज होगा तो आप हमसे बात कीजिए, ये आपका पैसा है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अपने को सम्मिलित करते हुए कहता हूँ, आप अपना घर बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं।
मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंगलूर में बाढ़ में अपने माता पिता को खोने वाली बच्ची निकिता को भी 7,95,000 रूपये का चेक प्रदान किया। उन्होंने निकिता के लिए 21 लाख रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को वन अधिनियम के तहत वन भूमि पर 1 बीघा जमीन दिलाने के लिए उन्होंने केन्द्र सरकार से मदद मांगी है, जो कि अभी तक नहीं मिली है।
मैंने देश के प्रधानमंत्री के सामने मुद्दा रखा कि आपदा प्रभावित परिवारों को जो अपनी जमीन में बसना नहीं चाहते, कम से कम वन भूमि में 1 बीघा जमीन का अधिकार कानून में आप बदलाव कीजिए। हमारे पास अधिकार नहीं है। अगर हमारे पास वन अधिनियम को बदलने का अधिकार होता तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, पीड़ित परिवारों के लिए उस कानून को भी बदल देता जिसमें 1 बीघा जमीन देने की जरूरत हो। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि आप हमारे इस कानून को बदलिए, जिस प्रकार हमने आपदा प्रभावित परिवारों की राहत राशि के लिए नियम बदल दिया, 1,30,000 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, तो अगर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये आता तो मैं इस कानून को भी बदल देता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मधु मांडव पहल का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के राजकीय महाविद्यालय पनारसा में 13,14,00,000 रूपये की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि धर्मशाला के तपोवन में 26 नवंबर से आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। वे आज तपोवन विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा भवन के अंदर मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान विधानसभा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र में कुल 8 बैठकें होंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर बुनियादी ढांचे और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने आज शिमला जिले के ठियोग उपमंडल के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देहा के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय भवन बनाए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में अब तक विभिन्न श्रेणियों के लगभग 7000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और 9000 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और नशे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ABVP की प्रांत मंत्री नैन्सी अटल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। नैन्सी अटल ने बताया कि यदि प्रदेश सरकार शिक्षा व कानून व्यवस्था पर संज्ञान नहीं लेगी तो ABVP प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी।
रोजगार युवा है वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की जैसे धज्जियां उड़ रही है, चाहे वो पिछले वर्ष की बात हो चाहे उससे पिछले वर्ष की बात, मर्डर की घटनाएं हैं या फिर महिला सुरक्षा की बात है, कहीं ना कहीं बढ़ता क्राइम रेट देश भर में हमारे हिमाचल प्रदेश की छवि को धूमिल कर। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस प्रदेश सरकार से कि प्रदेश सरकार कहाँ सोई हुई, हम उस पर संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं और क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
कुल्लू जिला में बंजार क्षेत्र के झनियार गांव में अग्निकांड की एक घटना में 16 मकान जलकर राख हो गए हैं। बंजार के SDM पंकज शर्मा ने बताया कि अग्निकांड की सूचना मिलते ही राहत व पुनर्वास दल को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और अंतरिम राहत राशि तत्काल उपलब्ध करवा दी गई है। घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए शिमला जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आज शिमला में अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें बर्फबारी के दौरान यातायात सुरक्षा और जरूरी सेवाओं को सुचारू रखने को लेकर रणनीति बनाई गई। उपायुक्त ने कहा कि शहर को 5 अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है ताकि भारी बर्फबारी होने पर सड़कों को जल्द खोला जा सके और यातायात बाधित न रहे।
आती हैं, बर्फबारी होती है, उसमें कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत ना आए, पर्यटकों का यहाँ आना रहता है, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना उनको ना करना पड़े। यदि बर्फ पड़ती है तो किस प्रकार से बर्फ को जल्दी हटाया जा सके, उस संबंध में एक टास्क फोर्स बनाई गई है। कंट्रोल रूम है, 24/7 फंक्शनिंग करेगा। हमारी राजधानी है शिमला, तो यहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए जो है इसको भी जो है वो 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है जिसमें सीनियर ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगे।
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में GST दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम बात कर रहे हैं अगली पीढ़ी के GST सुधारों से स्टेशनरी क्षेत्र को मिलने वाले बढ़ावे पर। पेश है एक रिपोर्ट।
नए GST सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी उत्पादों पर महत्वपूर्ण राहत दी है जिससे देश भर के छात्रों और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ है। पेंसिल, रबड़, शार्पनर, क्रेयोन, नोटबुक, ग्राफ बुक और मानचित्र जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर कर की दर पहले के 12% से घटाकर 0 कर दी गई है। इसी प्रकार रबड़ पर GST की दरों को पहले के 5% से घटाकर कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स और पाउच जैसी वस्तुओं पर जिन पर पहले 12% कर लगता था अब 5% GST कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर वित्तीय बोझ कम हो रहा है और बाजार में इन उत्पादों की खुदरा बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। नए GST सुधार शिक्षा तक पहुंच को किफायती बना रहे हैं, माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन को प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही घरेलू स्टेशनरी निर्माण की मांग को भी बढ़ावा दे रहे हैं।
पेंशन व पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 1 से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में 11 नवंबर को ऊना और 12 नवंबर को कांगड़ा में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर के दौरान पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्ढल मैदान में आपदा प्रभावितों को वितरित की 81 करोड़ रूपए से अधिक की राहत राशि। आपदा राहत पैकेज को बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने की घोषणा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, तपोवन में 26 नवंबर से आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद। एबीवीपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और नशे को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कुल्लू जिला के झनियार गांव में अग्निकांड की एक घटना में 16 मकान जलकर राख। और आगामी सर्दियों के मौसम के दृष्टिगत शिमला जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।